I'll get it in.
Okay, go ahead, Dad. نحمده ونستعينه ونصلي على رسوله الكريم. میرے عزیز دوست بزرگوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر ادا دین ہے، آپ کا ہر عمل عبادت ہے. اب جتنا جس کی زندگی میں حضور علیہ السلام کا رنگ چڑھتا چلا جائے گا، وہ اللہ کا اسی قدر مقرب بنتا چلا جائے گا. اس لیے ہر عمل کو سن کے اس پہ عمل کے لیے قدم اٹھانا چاہیے. ایک آدمی کی اپنی عادت ہے، اس پہ چلنا تو بڑا آسان ہے. عادت سے ہٹ کے جو چلے گا، یہ اس کا مجاہدہ بنے گا، اس مجاہدے اس کی طرف بھی ہوگی. تو بعض عادت آدمی کی بچپن سے پڑی ہے، اس کو بدلنا مشکل ہوتی ہوتا ہے. لیکن جب پتہ چل جائے کہ حضور علیہ السلام نے یہ کیا ہے، پھر تو آسان ہو جانا چاہیے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں یہ بات چل رہا ہے پچھلے دو دن سے. اس میں ایک بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برائی کا بدلہ برائی سے نہیں لیتے، بلکہ معافی اور درگزر سے. یہ تو رواج میں ہے، اس سے برا کیا تو میں بھی کروں گا. اب اس عادت کو بدلنا کہ نہیں، جس نے تو برائی کی ہے، میں اس کے ساتھ اچھائی کروں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جب تہمت لگائی گئی اور کتنی تکلیف سے بات کی، کتنی نیک اور سارے عورت اور سید رحم صدیق کی بیٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی اور ان پہ تہمت، تو اس کا بڑا صدمہ تھا. بارہ جب اللہ پاک نے قرآن پاک میں برات کی آیت نازل کی تو ساری چیزیں صاف ہو گئی. تو وہ حضور ابو بکر صدیق جو حضرت عائشہ کے والد تھے، ان کی کفالت میں ایک وہ صحابی بھی تھے جنہوں نے حضرت عائشہ پہ بہتان لگایا، جو شامل تھے میں ایک وہ بھی. تو ایک طبعی چیز ہے کہ میری بیٹی کو بدنام کیا، اب میں اس کا ساتھ پیچھے کروں گا. یہ طبعی چیز ہے کہ میں نے ساری زندگی اس کے گھر کو دیکھ بھال کی، سارے خرچے اٹھائے، اس لیے میری بیٹی کا الزام ہے. تو انسانی طبعی تقاضا ہے اس پہ آپ کہہ بیٹھے کہ اب میں مدد نہیں کروں گا. تو نہیں، تو اللہ پاک نے حکم بھیجا کہ نہیں، ابو بکر جیسے کرتے تھے اس کے ساتھ میں بھی کرتے رہوں. کتنے بڑے دل جگرے کی بات، کتنے بڑے دل جگرے کی بات ہے. بار بار سنتے ہیں، لیکن ہر دفعہ سن کے اپنے اوپر لائے کہ میں نے تو کس طرح ایسے نہیں کیا، تو پکڑے جائیں گے ہم کہ اپنے کیا ہم کر چکے. حضرت مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ ہمارے اس سے بڑے اکابر میں سے، ان کے ولی ہونے میں کوئی شک نہیں تھا. ان کی ایک ہی بیٹی تھی، ایک ہی بیٹی اور بھی اولاد نہیں. انہوں نے شادی کی وہاں ایک قاری صاحب سے مدینہ منورہ میں، اور حالانکہ دیکھا جائے تو دنیاوی اعتبار سے کوئی جوڑ نہیں تھا، لیکن دین کی نسبت سے قاری صاحب کو دیکھی تھی. مولانا کے سفر میں گئے ہوئے تھے، شاید شادی میں چنئی ہوا یا سال ہوا تھا، اور انہوں نے مولانا کی بیٹی کو طلاق دے دی. جب مولانا واپس آئے تو باپ سے جو بھی چیز تھی صحیح کام تھا، لیکن اب عمل دیکھیں سوائے سنت کیا ہوتا ہے. یہ واپس آنے کے بعد اس شخص سے وہی برتاؤ کیا جو پہلے کرتے تھے. کسی کو احساس نہیں ہونے دیا کہ اس نے میری بیٹی کو طلاق دی. ساری زندگی ویسی عمل، یہ ہے سوائے سنت کہ بیٹی پہ بہتان باندھنے والے کے ساتھ وہی برتاؤ کرو جو اس سے پہلے کر رہے تھے. تو ذرا ہم اپنے آپ کو سب پڑھ لیں کہ ہمارے اندر یا क्या है, हमें तो कोई एकदम आपको बुरा कह दे तो फिर उसके तरह देखने को नहीं जाता, कहीं कोई हमारी जीवन कर दे, बोहतान बांध दे, कहीं हमारी काट कर दे तो उसकी शक्ल देखने को नहीं जाता। मिजाज नबूवत क्या है कि बुराई का बदला अच्छाई से हो। अब जरा इस वक्त हम जायज लें कि अपने खानदान में, दोस्तों में हमने किसी को इस वजह से तो नहीं छोड़ा हुआ है कि उसने हमारे साथ बुरा बर्ताव किया। ससुरारों से लूट जाते कि मैं गया तो मुझे पूरा सही तरीके से मुझे देखा नहीं, पूरा इकराम नहीं किया, मान कैसे क्या कैसे बोले कि मानवान होता क्या है। इस पर मुझे 50% नमाज ससुरारों से रोकते हैं कि जैसे मुझे पूछा था मेरी अम्मी को नहीं पूछा, मुझे नहीं पूछा था, तुम पूछ लो क्या फर्क पड़ता है। और जो अपने ससुराल से रोक रहे हैं जो इसी मजे से तौबा करें तो बेचारी बीवी की जिंदगी यकीनन बनी है। बेटी की मोहब्बत अल्लाह पाक ने तबही रखी है, तबही है बेटी की मोहब्बत, इसको कोई रोक नहीं सकता। वो बच्चियां जो गरीब घरानों की मालदार घरानों में ब्याह के जाती हैं उनको भी अपना देखा ही याद आता है। इस ससुराल पोटी बंगलों की और बेटा क्वार्टर का देखो उनका दिल लगेगा क्वार्टर में, एक तभी चीज बनाई चाहे घर में 10-10 आदमी हो, 3-3 चार पे गाड़ी हो, बैठे में कुछ भी ना हो, दिल लगेगा बैठे भी। अल्लाह ने एक निजाम बनाया तो अगर उसके घर वालों के शौहर रुक जाए तो उसकी बीवी की जिंदगी अजीरन होती है, नहीं होती क्या करें, तो घर में शादी है तो घुट रही है कि अभी तो जाएंगे नहीं, जरा घर में तो कहते हैं तुम चले जाओ, वो किस दिल से जाए बेचारी। एक जगह कह रहे मैंने कहा तुम क्यों नहीं है, एक जगह मैंने पूछा कह रहे हर आदमी पूछता है कि वो क्यों नहीं है क्यों नहीं है, तो मैं क्या जवाब, तो वो रूठे थे सही दिया पूछेंगे तकलीफ में सर कि तुम्हारे दूल्हा का है तुम्हारे मियाँ का है, हम क्या जवाब दें, लेकिन फिर वो भी नहीं जाते और इनको पता नहीं हम कितने बड़े गुनाह के मरते हैं, होता है अभियत होता है। तो इसलिए ससुरालों से रूठना छोड़ दें, ससुराल भी अपना घर ही होता है, क्यों उसको दूसरी चीज समझी जाती है भाई, जैसे अपने बाबा वैसे बीवी के बाबा, जैसे अपने बहन भाई वैसे बीवी के बहन भाई, ठीक है वहां खुशो मत रहो मत, लेकिन रवैया तो रखे अपना ही इसका गैरियत, बीवी को बैठ के छोड़ने जाएंगे तो बाहर से गाड़ी से छोड़ के भाग जाएंगे, लेने जाएंगे तो हॉर्न बजा के बुला के लेके आ जाएंगे कि घर में जाना है लेकिन ऐसे क्या करते जाना, इतनी बदखलाती है कि आदमी अपने साथ ससुर के जाए और अंदर न जाए दरवाजे से गाड़ी बैठा के ले जाए, ये बदखलाती की इंतहा है। अपने रिवाज हो तो क्यों रिवाज डाला, एक आदमी की कभी इमरजेंसी है जल्दी है और फिर उसका ये जहन नहीं है कि मैं अंदर नहीं जाऊंगा, वो बात तो अलग है, बाद में दफ्तर जाते हुए आदमी लेता है कि यहाँ मीटिंग है या कि उम्री वालों का जैसे गश्त है या कोई ऐसी, वो तो बात अलग है, लेकिन नहीं कि अंदर नहीं जाएंगे जब तक कि दावत नहीं ली जाएगी। खानदानों को बनाना ठीक है और ऐसे अकड़ रहे जब तक ये दावत नहीं दो तब तक दावत क्या जाएंगे, दबाज पलेगा जहन पता नहीं है दूर से आया कहा क्या है, लड़की की घर वाले वक्त सूखते रहते डरते रहते कि किस वक्त हो गया, दावत में आएंगे ताखीर से अगर उन्होंने पहले खाना शुरू कर दिया तो नाराज क्यों इतनी ऐसी अहमियत दिखाते हैं कि मेरी वजह से 400 आदमियों का इंतजार कराया जाए, ये चोर है हम सबके अंदर, सब्जी में लगे भी नहीं निकल रहा हमारा,
تبلیغ الگ کے نہیں نکل رہا. کتنے تبلیغ والے داماد روح تھے اس بات پہ کہ مجھ سے میرے آنے سے پہلے کھانا پینا شروع کرا دیا. ایک جگہ سن کہ میری امی نہیں آئی تھی. ارے امی تمہارے چار گھنٹے تک پریشان کر رہی ہیں مہمانوں کو, انسانیت بھی ہے یا نہیں ہے؟ یہ ہمارے دعوت تھی دوپہر کو, انہوں نے دیکھا کریں گے جلدی فارغ ہو جائیں گے. چار بجے کھانا شروع تو ہوا کہ بیٹی کی ساس نہیں آئی. ایک عورت کی وجہ سے 500 مہمانوں کو پریشان کرنا, ساس نہیں آئی کا مطلب کیا؟ کھانا شروع کر دیا تو سامان روٹ جائے بیٹی کے شوق. اب ساری تکلیف کر کے جان کے دیر سے جاتے لیکن انتظار کر رہے ہیں. جو دن سے رہے تھے مجھے ایک نکاح پڑھا رہا تھا اورنگی ٹاؤن میں, مجھے ساتھی ہے روزانہ والے اس کا اثر میں روزگار تھا. اثر میں پہنچ گیا تو وقت سے کبھی تو پہنچا ہی نہیں ہے, تو میں سمجھا کہ شاید میں غلط مسجد میں آ جاؤں. اب نماز پیش سے دیکھو نہ لڑکے والے نظر آئے نہ لڑکے والے نظر آئے, اور دونوں اپنے ساتھی. تو میں نے پوچھا کہ غلط تھا کہ گھر کے نام یہی ان کا گھر ہے نظر تو نہیں آئے, میرے شاید دوسری بچے سے بات پڑ رہی ہوگی. اب ڈھونڈتا آج ہی شادی ہے یا غلطی سے آ گیا؟ چلیں گے نہیں آج ہی ہے. میں نے کہا سر کے بعد کہا تھا, کہتا وہ ابھی آئے نہیں ہے لڑکی والی برات کی ہے. جا کے مسجد میں بیٹھ گیا, مغرب کے قریب یا مغرب پڑھ کے دولہا صاحب آئے. دولہا صاحب وہ جو پرانے روزانہ میں چلتے ہیں, ان کو وعدے کا بھی خیال. میرا مکی مسجد کا اجتماعی کام پڑوایا. اب آ تو گئے, اب اگر وہ خاص انتظار کر لو بہنوں ہی نہیں ہے, بہنوں ہی نہیں ہے, تو بہنوں تو کاٹ کا دیا تم نے. اب یہ پتہ نہیں ہے بہنوں ہی اڑوا بیٹھا ہے کہیں, کیونکہ میں بھی ہندوستانی ہوں, ہندوستانی میں مرض بہت ہے. یہ مجھے پتہ لگی نہیں ہے. اب یہ دیکھے گا کہ نکاح میں میرا انتظار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اگر اس کی آئے بغیر نکاح پڑھا دیتا تو ساری تبدیلی خراب. میں نے سمجھ کے میں نے کیا میرے پکی بجے پہ آ رہے تو ہو ہی گیا. اب اس بچے کو رعایت سے گیا تھا کہ اس کا شوق وہ ہوا کیا بچا تو کچھ پہلے پہنچے میں نے تھا. میں نے سمجھ کے بیٹھا رات بجے کا پڑھا ہے. اب اتنے لوگوں کو اپنی ایک عادت کی وجہ سے اذیت میں ڈالنا یہ کون سا دیا ہوتا ہے؟ یہ ہم سب کرتے ہیں, ہم سب کرتے ہیں. تو کہیں روٹے گا کہیں گے روٹے گا, اتنی اہمیت تو ہوتی ہے ہم نے قائم کی کہ میرے بغیر کچھ ہو رہی. تو حضور علیہ السلام کے اخلاق آ جائے تو اس کی بڑی بیان آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے بلکہ برائی کا بدلہ آپ اچھائی اور اف اور درگزر سے معافی کر دیتے. چھوڑ سوچو بھی نہیں کہ کیا کیا ہے, سوچو بھی نہیں. اللہ اللہ سوچو بھی نہیں. بزرگوں کے اخلاق قربان جائے. کہ ہمارے ایک ساتھی نے اپنی کچھ حرکتوں سے بڑوں کو تکلیف پہنچائی, تو انہوں نے ارادہ کیا سفر پہ جانے کا. تو حاجی صاحب دعوت صاحب سے ہم نے پوچھا کہ انہوں نے یہ کیا ہے, ان کو بھیجے نہ بھیجے اجتماعی کام, اپنی ذاتی بھیجے نہیں اجتماعی کاموں میں. بھائی صاحب نے کہا کہ سوچے بھی مت کچھ, انہوں نے کچھ کیا ہے اور سوچے بھی مت کچھ کیا ہے. ایسا بزرگوں کا دل جگرا ہوتا ہے. اس لیے میرے بھائی بہت وسعت قلبی چاہیے, وسعت قلبی بہت وسعت قلبی چاہیے. دین کا کام کرنے کے لیے سیرا بہت بڑا ہونا چاہیے. اور اگر کوئی شخص برا ہوتا تو آپ اس کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرتے. ایک مطلب ایک شخص آئے تو آپ جو مسجد پہلے پہلے آپ کو ایک خبر خراب ہو आगे बैठे तो आपको तो ऐसा इकराम और ऐसा बर्ताव कि हजरत आयशा हैरान होगी। वो चले गए थे, असल आपने तो फरमाया था ये तो अब्दुल कबीर का बड़ा खराब आदमी है और आपका बर्ताव ऐसा था, तो आप ऐसा फरमाया किसी के बदल खिलाफ होने के लिए काफी है कि वो बुरों के साथ भी बुरा बर्ताव है। ये अब मेरे उनके बखूब है आप दोस्तों के अल्पास उसका बंद मैं उसके साथ रहता हूं। और हजरत आयशा से इसलिए गीबत में नहीं बनेगी कि हजरत आयशा ने से इसलिए कहा कि कहीं मेरा अच्छा बर्ताव देखे हजरत आयशा ये ना समझ जाए कि कोई ऐसा है और उनको मामला कर बैठो नुकसान, इसलिए एक शब्द को मालूम है कि पैसे लेके खा जाता है, दस आदमियों के कारोबार में लगाने के पैसे लेके खाया उसने। अब वो ये आया बिजनेस में, और अगर मैंने अपने कई तरी शादी को तरफे नहीं किया और मैंने उसको सुंदर सुधारी अच्छा बर्ताव किया खाया और खाया इकराम और खिदमत, तो साथी भी समझेंगे कि तो बहुत अच्छा था और वो पैसे ले बैठेंगे और उसके आधार पर कलम करने की। तो आपने अच्छा बर्ताव नहीं किया हजरत आयशा ने बचा भी दिया, कई लोग रहमतुल्लाह के साथ कुछ रहने वालों ने कारोबार जो आजकल मर्ज पड़ा है दूसरे का पैसा लेने के कारोबार में लगाना फिर नुकसान हो गया, तुरंत लोगों से पैसे लिए और कारोबार में लगाए अब वो नुकसान हुआ है जो कुछ हुआ अब लोग गुस्सा और मौरण से मौरण हमें तो आपकी वजह से दिया कि आपके साथ रहते तो ऐसे हो मौरण से उसमें क्या करें। तो आज के लोग बुजुर्गों की बुजुर्गी को भी बेचते हैं, उससे किसी ने कहा कि फला जगह एक साहब है उन्होंने या आपका तारुफ कराते कि मैं खादिम 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 खास करके मैं उनमें खादिम आम भी दिया खास करते आया भाई और ये इस तारुफ से उनसे उन्होंने काम करवा लिया किसी दूसरे मुल्क में जाकर। जब उन्होंने नाम नहीं बताया तो मैंने कहा मेरे के अंदर कौन सा खादिम है जो इस नाम का, मैंने कहा मैं तो खादिम आम भी नहीं खास कर दिया है, तो लोग इस तरह भी तारुफ करा कर आगे काम कराते हैं। कहता हूं कि अगर मेरे नाम से कोई कर्ज मांगे सर मुझसे तो पूछो क्यों नहीं ये किया है। बात नहीं कहते कि हजरत से कहा है कि और बेचारे ने आज मुझसे नहीं पूछते और वो कर देते अपने परेशान से। इसलिए अगर कोई किसी के नाम से पूछ करे तो पूछे। एक साथ यहां आए और एक तबलीग में अभी नए नए लगे ज्यादा ताल्लुक नहीं है बहुत पैसे वाले और उनसे आगे कहा कि रायपुर में इस्तेमाल के लिए बात हुए तो हाजी साहब ने फरमाया कि भाई कराची रायपुर से 18 लाख रुपए गए 18 लाख रुपए चले गए। अब उनको विचार होते नहीं कि भाई ऐसा नहीं और कितने नहीं होते होते एक पकड़ा गया। अगर कभी कोई इस तरह करे कि रायगढ़ में हमीद साहब ने ये कहा है या मक्की मस्जिद हाफिज ऋषि सूरती साहब ने ये कहा है या खानका में वाल मजदूर ने कहा है तो कम अज कम उससे पूछे पहले, क्योंकि अब हालात ऐसी है बनता है कोई ऐसे रस बेच के भत्ता वसूल करता है कि 50 लाख दे दो वरना गर्दन ले लो और भी बुजुर्गों के नाम लेके करता है धोने की चीज है बुजुर्गों के नाम इस्तेमाल कर करके आदमी पेशा बना रहे। तो आपने कहा कि ये सजने का बदतरीन आदमी है लेकिन जब वो आए भाई इसमें तो आपने बहुत अच्छा बर्ताव किया उसके खिलाफ उसने कहा आयशा को इसने बोलते कब्जे कर दिया कि कहना आयशा अच्छा बर्ताव देखकर उसके सामना करना पड़े ये है किसी के गुरु होने की वजह से तो उसके साथ बुरा बर्ताव नहीं किया जाए तो उसको अंदर पक्ष हो जैसे बुराई क्या नहीं पाई। अब जरा देखेंगे इस पर हम अमल कर सकते हैं कितना सख्त मरहला है لوگوں کی وجہ سے دیکھا ہے بعض لوگوں کو کہ بزرگ بھی جانتے ہیں کہ یہ حرکتیں ہیں, لیکن واقعی ان کی وجہ سے ان کے ساتھ برتاؤ, ساتھ بیٹھا کے کھانا کھلا رہے ہیں اور کہتے ہیں ایسے محبت سے بات کرے صحیح کری جاتی تھے, آدمی بھی حیران ہو جاتا. ایک صاحب نے بہت بے اصولی کی, بہت بے اصولی کی, سب کے اعتبار سے تو بڑوں کا سفر تھا تو کہیں تشکیل دی کہ بھائی بڑوں میں سے کسی کی بھائی ان کے ساتھ یہ بھی ہو جائے, تو انہوں نے کہا ان کو میرے ساتھ کرو جو میرا بہت نقصان پہنچایا جاتا. میں بھی تھا وہ بھی تھے, واپسی میں ان سے پوچھا میں شخص سے سارا کام کو نقصان پہنچائے, آپ ان کو اپنے ساتھ ایسے لے کے چلنے جیسے کوئی ہر وقت کا, تو کہہ لیں میں واسطے ساتھ رکھ کے سلسلہ ہو سکتی ہے, چھوڑ کے نہیں سلسلہ ہو سکتی, ہاتھ رکھ کے تو ہو سکتی چھوڑ کے نہیں. اب جو ہمارے ساتھ چلیں گے اور صحیح لوگ کی بات سامنے آئے گی خود ان کو احساس کرے گا کہ میں غلط کروں, چھوڑ کے ساتھ نہ ہوں گے. تو امت کے کسی فرد کو چھوڑ, یہ ہے اخلاق ادب. اس کو برا کہہ کے چھوڑ دیا, اس کو خراب کہہ کے چھوڑ دیا, اس کو غلط کہہ کے نکال دیا. بے سنی جس سے اجتماعی کام کو بہت نقصان پہنچا, اور ایک دفعہ نہیں بار بار آج صاحب جامل رسادوں نے حضرت رحم اللہ سے پوچھا کہ حضرت یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں تو کیا ان سے بات کریں ہم, تو حضرت صاحب بات تو کرو لیکن کس رہنے کی جانے کی دے رہے ہیں, بات کرنے کا فائدہ ہی تو بات ہی کرنا چاہتے ہیں کہ اس کا رکھاؤ نہ دیتے, آدمی سوائی کام کے اندر نقصان پہنچائے. حضرت صاحب آپ بات تو ضرور کرو لیکن اس ذہن سے کرنا کہ جانے نہیں دے رہے. اب ہم سب الحمد للہ تبدیل کے کام میں لگے رہے, اب ہم سوچیں گے کہ ہمارے بڑے اخلاق کے لیے تبدیل سے محروم تو نہیں ہوتا, بہت بڑی اثر تھا کہ یہ تو آدمی کو یاد رہتا ہے فلا میرے ذریعے سے لگا, فلا میرے ذریعے سے لگا, الحمد للہ اس کے سارے سفر میرے حساب میں, سارے چیزیں میرے حساب میں ہیں, لیکن یہ یاد نہیں ہے کہ کتنے میری وجہ سے کٹے, نہیں یہ ابھی یاد نہیں. تو اخلاق جو ہے اخلاق یہ دین کا ایک حصہ ہے, اخلاق دین کے. ایک مجھے بھی چند دن پہلے ایک بچے نے خط بھیجا کہ سارے ساتھی میرے ساتھ یوں کرتے, میرا وضا پڑھاتے یوں کرتے یوں کرتے, میرا دل ٹوٹ گیا میں آؤں گا. لگا تو بہت سارے اللہ نے اس کو میرے لیے سبزی بنایا اور توڑتے وقت نکالا رہا میرا لیے ہوتی, ابھی ان کے اپنے کی بات اللہ کی شان بچے نے خاصہ میں کسی نے ٹوک دیا تو جائے گا ہمارے اپنا آپ کی وجہ سے کسی کا دل لڑا, ہر جگہ کو اصولوں کو روکتے بھی رکھنا ہے اور دل بھی نہیں روکتے, یہ مزدور سلم کا برائی کرنے والے کے ساتھ بھی اچھائی سمجھتا, اور جب کسی کی برائی آپ کے سر کے سامنے آتی تو آپ تھوڑا سا چہرے سے تو اندازہ ہو جاتا تھا کہ آپ کو پسند نہیں آئی لیکن کچھ کہتے نہیں. ایک صحابی ہے ایک ڈاکٹر, ان کے درد درد کی چاہتا اور آپ کو یہ سمجھا تھا کہ مت ایسے رنگ پہ, تو چہرے سے اندازہ ہو گیا آپ کے, لیکن جب وہ چلے گئے تو صاحب نے کہا کہ کاش تم نے تو کوئی کوئی سمجھا دیتا کہ یہ نہ پہنے, ان کو خود سے نہیں ہوگا, خود سے نہیں ہوگا. اسی لیے اگر کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کے بارے میں کوئی بات کہنی ہوتی مجھے بیٹھا تو اس کا نام لے کے نہیں کہتے, کیسے کیا ہو گیا لوگوں کو, کیا ہو گیا لوگوں کو یہ کیوں نہیں کرتے, क्या होंगे लोगों को मैं उनसे कहता हूं और वो सही हो नहीं करते, तो जिसका मतलब होगा वो समझ जाए। एक तो वो भी बात करते नहीं रजी अल्लाह तक मस्जिद से कोई बदनजरी करके आता तो अल्लाह ने अंदर की रोशनी दी थी, पहचान लेते और कहते क्या हो गया लोगों के इनकी आंखों से जिना का पकड़ा। अब जो बदनजरी करके आया वो समझ जाता ना, बाकी वही पता जिसके बारे में कह रहे। कितनी किसी की इज्जत का ख्याल, कितनी किसी की इज्जत का ख्याल। और आप अलैहिस्सलाम के अखलाक इतने ऊंचे थे, इतने ऊंचे थे कि आप अलैहिस्सलाम को अगर कोई कोई हदिया देता तो आप उससे बड़ी हदिया होती, बढ़िया हदिया देते थे। एक सहाबिया है वो कहती है कि मैं आप की खिदमत में खजूर और नर नर ककड़ियां लेके आप सल्लम ने खजूर और ककड़ी को मिला के खाया कि दिल्ली से बाय सुंदर से खा लिया, खजूर और ककड़ी को साथ मिला के खाया, दोनों में जल खजूर की गर्मी को ककड़ी मार दे। तो इंसान ही उनके लिए आपने मुझे एक कुट्टी खजूर और ककड़ियां जल लेके आई तो हुजूर अलैहि सल्लम के बदले में एक मुट्ठी भर के सोना दिया, मुट्ठी भर के सोना दिया। आप ही अखला आपको हदिया देता तो आप उससे बेहतर हदिया। मेरे भाई ने यही सारी चीजें सीखने की है, यही सारी चीजें सीखने की। और हमारा बेटा हाथ है कि हम उनको दे रहे तो हम बनियों की तरह जो बनिए जो होते हैं आप बताते हैं कितने सही बचता होगा, तो उसी के बराबर है जो बनिया बना है कि जितने को उससे उतना दिया उतना ही मैं भी दूंगा। अगला बदला है आप उसमें कुछ मालियत से ज्यादा मालियत की चीज उसको देते हैं। और आप अलैहिस्सलाम के आला अखलाक में ये बात की कि आप अपने काम खुद कर लेते, खुद कर लेते, हत्ता के आटा भी गूंद लेते, कपड़े पे बेबन भी लगा लेते और जूता भी गाड़ लेते। इन सुन्नतों को अपनाने का भी तो शौक होना चाहिए। अगर ये सुन्नत हरार भी अपना ले तो घर की जिंदगी को फिर जवाब हमारा हाल दिए कि दस्तखान में बैठते हैं इधर वाले सब पूरे लगाए और ऐसे मेहमान जरा उठ जाते चले को कोई बात सही है, दस्तखान उठाना तो बर्तन उठा के बॉर्डर खाने में पहुंचा देना, इसको भी हम हार महसूस कर। हुजूर अली सलाम अपने घर वालों के साथ घर के काम में हाथ बटाते, हाथ बटाते। इस सुंदर से अमल बड़ा मुश्किल हो रहा है कि आप आटा भी गूंद लेते, अपना कपड़ा भी सी लेते, पेवन भी लगा लेते और जूता भी, जूता फट जाता है जूते को काट लेते, अपने हाथ से काट लेते। यही सारी चीजें दी है या खाली नमाज रोजा ही नहीं, क्यों इसको आपने अलग कर दिया? इस तरह ख्याल ही नहीं जाते। ये हुजूर सल्लम के आला अखलाक है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह अपनी जिंदगी गुजारी। और एक बात ये कि आप सल्लम हजरत हसन कहते हैं कि मैंने अपने वाले हजरत अली रजी अल्लाह से पूछा कि आप सल्लम के अखलाक क्या है। अली फरमाते हैं कि मैंने आने जाना था, हम आदमी थे और उससे मैंने कचरा भाई थे तो घर की जिंदगी घरवार हो जाना पता होती है। तो फरमाया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर के औकात को तीन हिस्सों में तकसीम किया, एक हिस्सा घर वालों के लिए, एक हिस्सा अपने राहत और आराम के लिए और एक हिस्सा अल्लाह की इबादत के लिए। घर के औकात इसीलिए कर रहे हैं जैसे हम अगर कॉलेज तक आ जाते हैं अगले सुबह 8 बजे तक रहते तो घर के जो अवकाश थे उनको तीन अक्रमण तीन किया था, एक राहत और आराम के लिए, एक धर्म धर्म से बातचीत के लिए और एक के बाद के लिए। तो फिर फरमाया कि अपना वक्त तो दे देते दे। जो अपने राहत का वक्त रखा था वो आप लोगों को दे देते थे और उसमें तरजीह देते थे खवास को उनके हैसियत के बगल में। ये उनका जाती वक्त है, इज्तमाही वक्त में सब बराबर है। और इसलिए कि खवास के जरिए से आवाम तक बात को पहुंचा नजर आ रहा था। एक आदमी चौधरी एक इलाके का, अगर वो तकलीफ बदल गया तो सारी खबर लग गया सराय, और वो रुकावट बनता है तो सबके लिए रुकावट बनता है। जैसे आप सल्लम खवास को अहमियत देते थे, ये नहीं कह रहे थे कि खवास और होते, आप सरदारों को बुला और उनके बड़े लोगों को बुला उनके लिए अपनी चादर को बिछा दे। तो चूंकि आपका जाति वक्त हो आपसे प्यार से किसी को उसमें तरजीह देते थे नॉर्मल बनस्पत के कौन कितने दर्जे का है उस एतबार से उसको वक्त देते थे। और क्योंकि आम आ जाए कुछ वे अपनी राहत का अवकाश तो दे देते थे, लेकिन जो खलवत का वक्त अल्लाह की याद को वो किसी को नहीं देते। इसी दावत के काम करने वालों को भी 24 घंटे में एक वक्त तनहाई का अल्लाह की याद के लिए जरूर तनहाईता में फरमाया। मदीने वालों से निकले मैं साथ साथ रोजे हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाहर निकले बाबे जिब्रील से, अब उसने कहा कि तू बेटा अगर सिर्फ दावत ही होती तो अल्लाह पाक उन सलम को क्यों कहते गए मौसरा रात की तनहाई आधी रात को और बड़ी रात को। इसलिए दावत के काम करने वालों का कुछ वक्त तक तकलीय में अल्लाह की याद रखता है कि वो और उसका अल्लाह जैसे हुजूर से कहा आधी रात को भी पैकाली कमरे वाले आधी रात को या तिहाई रात को। जरूरी था सब तो तभी तो हुजूर को कहा जा रहा है, तो हमें कितनी जरूरत है इसकी। तो ये भी सुन्नत है कि घर का एक हिस्सा अल्लाह की याद, तो अपने औकात को तीन हिस्सों में तीन सकते थे। मुसलमानों के लिए हक है जहर ना बोलना बातें करना तो ये आप वक्त देते और अपने वक्त की कुर्बानी दे देते, अपने राहत की कुर्बानी दे देते। और कोई अगर जरूरतमंद आ जाता तो आप उसके कामों में लग जाते, पर बात है कि कभी किसी का एक काम होता तो आप उसको भी कर देते, दो होते तो दो में लग जाते, तीन होते तीन काम में लग जाते। तीन घर की जिंदगी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि मुझे उस शख्स की जरूरत बता दो जो अपनी जरूरत को मुझ तक नहीं पहुंचा सकते। बाद में होता है कि कोई जो बड़े आदमी होते हैं हाकिम है किसी इदारे के बड़े हैं और कोई किसी जमात के बड़े हैं और उनके मशाविर इतने हैं कि हर आदमी उन तक पहुंच नहीं सकता और है उनकी हाजत पूरी। शहर का मेयर है या गवर्नर है या वजीर आला है, हर आदमी नहीं पहुंच सकता और वो भी हर तक नहीं पहुंच सकता। अब जाकि वजीर आला क्या 1.5 करोड़ आवाम तक पहुंच सकता है, कितने अखलाक वाला नहीं पहुंच सकता। ऐसे लोग जो उस तक किसी की बात पहुंचा सके उनके बारे में कहा कि तुम लोगों की बात को मुझ तक नहीं पहुंच सकते, जरूरत हाजत मुझ तक पहुंचा दिया करो। हाँ क्योंकि जिसने अमीर तक ऐसे आदमी की हाजत को पहुंचाया, अमीर से बड़ा आदमी जो बड़ा है, किसी ने अमीर तक ऐसे आदमी की हाजत को पहुंचाया जो खुद उस तक अपनी हाजत नहीं पहुंचा सकता, कयामत के रोज अल्लाह ताला उस शख्स को साबित कदम रखेगा। अगर कौन किसी के सामने पड़े और किसी बीच में पड़े ये नहीं, अगर कोई किसी की हाजत को हाकिम तक पहुंचा सकता है उस जगह के बड़े तक पहुंचा सकता है जहां तक वो नहीं पहुंच सकता, तो अल्लाह पाक क्यामत पे ऐसे शख्स को साबित कदम रखेंगे। गए काफी सारे उड़वाते रह गया उसके बड़ा पार करते। बस आपके पास यही तस्करा रहता और इसके अलावा आप किसी की कोई बात पसंद ना फरमाते। सुफियान बिन वकी की रिवायत में है कि सहाबा आपके पास इल्म दीन के मुतलाशी बन के आते, दीन सीखने की तलब लेकर आते हैं और बगैर लिए वहां से जुदा ना होते, तलब से आते और कुछ लेके जाते, जुदा ना होते। और जब निकलते तो उस चीज को सीखे हुए निकलते, यानी इतनी तरफ से आते कि उस बात को सीख जाते। सारे बच्चे आते थे और लेके जाते थे, ये तलब की वजह से थी। अल्लाह पाक भी हमें हुजूर अलैहि सलाम का हर मौके का इस्तेमाल नसीब फरमा दे। मेरे भाई और उन चीजों को सुन के हम इसको अपने में लाने की उम्मीद आज से करें और जो चीज मुश्किल है उसको पूछ। सुनते ही ये जहन बना लेने का ये बड़ा मुश्किल है, फिर तो आदमी अमल कर, फिर तो अमल कर। ऐसा ने एकदम फरमाया जो हम उसूल तुम्हें बताएं और काम के जरिए से बताएं तो तुम सुनते ही ये मत सोच लो कि ये मुमकिन नहीं है। कराची वालों के लिए मुश्किल और ऐसा नहीं कहते, कराची वालों के असर से ऐसा मुश्किल है। कराची बड़ा शहर है, मगरिब तक तुम लोग आते वहां का जरा ढाई घंटे असर से ऐसा दो। कराची वाले सुनते ही ये जहन बना लेते हैं, कराची वालों के लिए मुश्किल। बड़ा शहर है, मगरिब तक तुम आप ऐसा नहीं कहते, तुम सुनते ही ये जहन मत बनाओ, सुनते उसको करने की कोशिश करो। अब कदम उठाओ मुश्किल लगे फिर आपको पूछो कि आपने कहा था हमने कदम, ये मुश्किल लगे। तो ऐसी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत सुन के ये ना जहन बनाए कि हमारे लिए मुश्किल है, ये बिल्कुल आसान। हाँ, इस पर कदम उठा के जो मुश्किल लगे उसको फिर मशवरा कर, ठीक है। ऐसे रोजाना इसकी कोशिश किया गया और इसका बेहतरीन तरह हम जाके इसका मुजाकरा करेंगे कि यही होगा। कुछ याद रहेगा कुछ भूल जाएंगे तो अल्लाह पाक जो याद है उसका अमल, इस तरह घर वाले भी इस पर आ जाएंगे। कैसे मुजाकरा करें, दफ्तर में मुजाकरा करें, जो रास्ते में उसको मुजाकरा करें, सुन्नत होगा ताकि सुन्नत दुनिया में फैले। अल्लाह अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. بہتر والا گھر ہے تو اندر آتے ہیں، نماز تو 8 بجے ہے۔